ओम शांति। कोई कल का निरा अपरिचित जीवन का आधार बन गया, बांध रही एकाकी मन को यादों की जंजीर सुनहली, निंदियारी पलकों ने खोई सपनों की जागीर रूपहली, रोम रोम में एक अजानी मीठी सी सिहरन का पहरा, दृष्टि परिधि में भी ना रहा जो सांसों का आगार बन गया, जिसका कभी जिसकी कभी कोई खबर ही न मिली थी, जिसे कभी देखा भी न था, दृष्टि परिधि में भी न रहा जो सांसों का आगार बन गया, वही तुम्हारी सांस सांस में समा जाएगा। आश्वासन के शब्द पखेरू वचनों की शाखों पर चहके, अभिलाषा के कमल वनों में सुरभित धीरज पदपद महके, उग आए हैं बोल प्यार के भोले भाले प्रणय अजीर में, नाम किसी का अनजाने ही गीतों का आभार बन गया, जिस नाम से तुम्हारी कोई पहचान नहीं, जो अब तक अनाम है, नाम किसी का अनजाने ही गीतों का आभार बन गया। कवि ने लिखा है कि जिसका अब तक कोई परिचय नहीं था, जिसे आज तक जानते नहीं थे, वो अब जीवन का आधार बन गया है। अब तक अननोन था, बांध रही एकाकी मन को यादों की जंजीर सुनहली, गोल्डन चेन्स यादों की सुनहरी जंजीरें यादों की अब बांध रही है मन को। अब तक जिसके विषय में कुछ भी पता नहीं था, अब वो बंधन बन गया है। जैसे निंदियारी पलकों ने खोई सपनों की जागीर रूपहली, सिल्वरी जो संपदा थी, जागीर थी सपनों की, अब वो खो गई है। क्योंकि क्या हो गई, पलकों से नींद उड़ गई है उसकी यादों में, इतना वो नैनों में बस गया है, मीठी सी रोम रोम पर एक अजानी एक अनजान, मीठी सी सिहरन का पहरा है, कपकपी है उसकी यादों की, दृष्टि परिधि में भी न रहा जो सांसों का आगार बन गया, जो पहले दृष्टिगत नहीं था, दिखाई भी नहीं देता था, अदृश्य था, अब वो सांसों का जैसे खजाना बन गया है, जिसकी कभी कोई खबर ही ना मिली थी, जिसे कभी देखा भी नहीं था, दृष्टि परिधि में भी ना रहा जो सांसों का आगार बन गया, वही तुम्हारी सांस सांस में समा गया। ऐसी उसकी जीवन में प्रवेशता हुई कि वो सांसों सांसों में समा गया। आश्वासन के शब्द पखेरू वचनों की शाखों पर चहके, अभिलाषा के कमल वनों में सुरभित धीरज पदबद महके, जो वचन थे आश्वासन के, जो शब्द है वो किन शाखाओं पर है, वचनों के शाखाओं पर चहक रहे हैं, अभिलाषा के कमल वनों में सुरभित महक रहे हैं, धीरज पदबद महके, उग आए हैं बोल प्यार के भोले भाले प्रणय अजीर में, प्रणय के आंगन में, प्रेम के आंगन में भोले भाले प्रेम के शब्द खिले हैं, नाम किसी का अनजाने ही गीतों का आभार बन गया। जितने गीत लिखे जा रहे हैं सब गीत में ग्रेटिट्यूड है, सब गीत में आभार है, सब गीत में अहोभाव है, धन्यवाद है उसका जो जीवन में अज्ञात रूप से आ गया, जिस नाम से तुम्हारा कोई पहचान नहीं, वो अब जो अब तक अनाम था, नाम किसी का अनजाने ही गीतों का आभार बन गया। कवि लिखता है, ये कौन आया मेरे मन के द्वार, कहां से आया पता नहीं, रूह में किस ने प्रवेश किया, जो रूह में जो रूहानियत थी उसको जगा दिया, जो अपरिचित था अज्ञात था कोई आभास नहीं था, जैसे ही उसका जीवन में आना हुआ, जीवन खिल गया, महक गया। सुरभित हो गया। कौन सी सुरभि, कौन सा सौरभ वो जीवन में लेके आया? वो सौरभ है रूहानियत का। स्पिरिट ने स्पिरिचुअलिटी को पाया। तो कल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने रूहानियत के विषय में समझाया है। एक यहूदी संत को कभी किसी ने पूछा था, स्पिरिचुअलिटी क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत क्या है? उसने उत्तर दिया था, स्पिरिचुअलिटी अर्थात और आगे और आगे और आगे। यह परिभाषा है अध्यात्म की। अध्यात्म क्या है? और आगे और आगे। हेलिल नाम का वो फकीर, उसने उत्तर दिया था, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे। कहीं पर भी रुक नहीं जाना। थोड़े से अनुभव हो गए, आंखों से आंसू, और यहां लाइट और वहां लाइट, और यहां फरिश्ता स्वरूप दिखा, और बाबा का अनुभव हो गया, और उसकी छत्र छाया, और उसकी मदद, और उसका ऐसा अनुभव हुआ कि लगा कि बस अब वही एक सहारा है। और उसने उसे हमने पुकारा और वो तुरंत आ गया, और हमने हमने अनुभव भी सुना दिए। परंतु ये सब क्या है? मील के पत्थर, पर गंतव्य नहीं, मंजिल नहीं है, मील के पत्थर है। अध्यात्म में जो भी अनुभव हो रहे हैं वो केवल मील के पत्थर है, क्योंकि लक्ष्य बहुत आगे है, डेस्टिनेशन अभी पहुंचा नहीं है। अध्यात्म की सबसे अच्छी परिभाषा यह है, और आगे और आगे और आगे, आगे बढ़ते ही जाना, बढ़ते ही जाना, रुकना ही नहीं। वो सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी की ये भाव कि अब हो गया, बहुत कर लिया पुरुषार्थ, बहुत मुरली रिवाइज हो गई, और बहुत अमृत वेला कर लिया, और बहुत ज्ञान की चर्चा कर ली, अभी थोड़ा सा आराम, रेस्ट। भाई जी कहां है? रेस्ट पर है। ये ब्राह्मणों के शब्द है। यहां रेस्ट तो है ही नहीं, यहां रुकना है ही नहीं। भगवान कभी रुकता है क्या? हां, वो क्रिश्चियन का परमात्मा रुक जाता है। वहां पे कहा गया है कि 6 दिन उसने दुनिया बनाई, और फिर उसको थकान हुई और कंबल ओढ़कर सो गया। पर हिंदुओं का परमात्मा सोता ही नहीं, वो तो जागा ही है हमेशा। कभी बोला है, कभी कहा है, कहीं सोता है करके, कभी नहीं सोता। हाँ, उनका इसके लिए संडे छुट्टी हुई। भारत में संडे कभी छुट्टी नहीं थी, जब अंग्रेज भारत में आए तब से चालू हुआ संडे छुट्टी, क्योंकि ये उनकी सभ्यता है, क्योंकि उनका परमात्मा थक चुका था, उसको भी लगा थोड़ा आराम करूं, 6 दिन दुनिया बना ली, अब तो कुछ करना चाहिए। तो थकान मिटाने के लिए कंबल ओढ़कर सो गया, और सीधा सोमवार को ही उठा। पर हमारा हिंदुओं का परमात्मा कभी नहीं सोता, लगा ही रहता है दिन रात। क्या तो अध्यात्म अर्थात कभी ना सोना, अध्यात्म अर्थात कभी ना रुकना, अध्यात्म अर्थात निरंतर चलते रहना। अध्यात्म इज अ स्टेज ऑफ डायनामिज्म, स्टैटिक अवस्था नहीं है। अध्यात्म अर्थात अपनी समझ को बढ़ाते रहना, अध्यात्म अर्थात अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने विचार, चाहे अब तक जो भी कुछ किया होगा, हजारों स्टूडेंट्स आ गए, हजारों सेंटर्स खुल गए, पर यह समझना यह सब क्या है? केवल मील के पत्थर। इनको पकड़ के मत बैठ जाना कि यही मंजिल है, मंजिल अभी बहुत आगे है, सितारों से आगे जहां और भी है। तो रूहानियत के विषय में 10 बातें कल बाबा ने बताई है। या रूहानियत रूह में आ जाए उसके लिए क्या क्या करना है, उसकी विधि बताई। कौन सी 10 बातें थी? आप पहले बताओ रैंडम, फिर हम एक के बाद एक बताएंगे। सबको आत्मा देखना, एक और एक व्रता, और बोलते जाओ, अमानत, ट्रस्ट, ट्रस्टी पहली मुरली में शब्द था, सेकंड मुरली चालू है, सेकंड पार्ट। ये मुरली किसी डेट की नहीं है, क्योंकि इस मुरली में अलग अलग जगह से वाक्य लिए हुए हैं, और वो कहीं कहीं से लिए हुए को भी मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। इसके लिए मुरली की कोई डेट नहीं है, यहां वहां से लिए हुए बाबा के संकलन है इसमें। इसके लिए उसका कोई ऐसा क्रम नहीं है, कहां से किधर आया है, कोई वाक्य इधर से आया, कोई किधर से आया। और क्या कहा? सेकंड मुरली, डबल लाइट वो पहली मुरली है। रूहानियत के विषय में कहां है वो फिश वाला, फिश बोन मछली कहां चली गई पानी में क्या क्या कहा रूहानियत के विषय में? माता जी, आशीष भाई, निखिलेश भाई, विठल भाई, नरेश भाई, प्रकाश भाई, हरि भाई, वाणी में आने की दिल नहीं होगी, बीच में एक वाक्य आया है। सुशील भाई आप पहले से ही रूहानियत में स्थित है इसके लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और घबराहट में आ जाएंगे, उलझन में आ जाएंगे, राहत नहीं मिलेगी बुद्धि को, और अनासक्त रहेंगे। क्यों? कब? जब रूहानियत में रहेंगे तो नहीं, उसके बीच में दूसरा शब्द है, अमानत वाला है। और अलौकिक, अलौकिक क्या? लौकिकता समाप्त हो जाएगी, रूहिया की गुह्यता में जाकर क्या करो, फरिश्ता बना। तो ये सारी बहुत सारी बातें, वृत्ति का वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है, वो भी बोला और वो भी बोला, दोनों राइट है। तो रूहानियत के विषय में 10 बातें बताई है, रूहानियत जीवन में कैसे आए, रूह में रूहानियत कैसे भरे, आत्मा में आत्मिक भाव, आत्मिक स्थिति कैसे आए। सबसे पहला है एक व्रता, सबसे पहला रूहानियत लाने के लिए क्या करना है, एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक व्रता, जैसे संसार में पतिव्रता होता है उसी तरह यहां पर पिताव्रता, पतिव्रता, साजन व्रता, एक साजन व्रता, एक माता व्रता, एक भाई व्रता, एक गुरु व्रता, एक सखा व्रता, एक बाबा के मेन 8 संबंध है, सर्व संबंध व्रता मुख्य 3 मुख्य 8 संबंध, 8 में से फिर 3 मुख्य, 3 में से फिर 1 मुख्य। तो सबसे पहला एक बाप व्रता, एक पिता व्रता, एक माँ व्रता, एक टीचर व्रता, एक गुरु व्रता, एक बच्चा व्रता, एक बच्चा व्रता, एक सखा व्रता, एक साजन व्रता, और एक और बंधु व्रता, बंधु या बहन। बहन किसने बनाया है शिव, किसने बनाया क्या? हाँ नहीं नहीं वो अच्छा वो बांधता है, बांधती है तो सबसे पहला है एक व्रता पर अटेंशन, ये सबसे बड़ा पार्ट है यज्ञ का। एक ही व्रता, व्रत लेना है, व्रत अर्थात व्रत तोड़ते हैं क्या कभी संसार में? कोई महिला, कोई स्त्री, कोई गृहिणी जब व्रत लेती है कुछ भी हो जाए व्रत नहीं तोड़ेगी। एक बार जो प्रण ले लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या प्राण जाए वचन ना जाए, प्राण चला जाएगा पर वचन नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही रूहानियत लाने के लिए सबसे पहली चीज कौन सी चाहिए? एक व्रता। अपने व्रत को, अपने नेम को, अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने प्रॉमिस को, अपने ओथ को, उसके साथ किए वायदों को फिर रिवाइज करना। एक व्रता। कोई कोई है जो चतुर्भुज बनने की फिराक में है, चतुर्भुज बनने की फिराक में है, तैयार बैठे हैं, अवसर मिल जाए और कोई साथी अच्छा वाला साथी मिल जाए तो सतयुग में चतुर्भुज नहीं, यही चतुर्भुज बनने की तैयारी है। अभ्यास नहीं, बस कभी कभी ये भी सोच के आते हैं कि एक बार चतुर्भुज बनने से पहले थोड़ा मधुबन का एक चक्कर लगा के आते हैं, इन लोगों के क्या मत है, बाकी अपना डिसीजन फाइनल है, खाली राय पूछने के लिए कि फिर उनको कहना कि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, फिर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, फिर सामने वाले को ऐसे ही प्रश्न पूछना कि तुम क्या कहते हो बताओ, बाकी अपना डिसीजन चतुर्भुज बनने का तो पक्का है। मैं चतुर्भुज आत्मा हूं, यह संगम का समान है। कि सतयुग त्रेता में बनना है तो सतयुग त्रेता में जाके बनना, इधर नहीं बनना, वो वाला चतुर्भुज नहीं, दूसरा वाला चतुर्भुज की बात चल रही है। लक्ष्मी की खोज जारी है और नारायण की खोज भी जारी है, कोई अच्छा वाला नारायण चाहिए पक्का। कोई अच्छी वाली लक्ष्मी पक्की, एकदम धारणा में पक्की। हमारी कन्या के लिए अच्छा वाला ब्रह्मा कुमार चाहिए, एक बाहर वाला नहीं चलेगा, इधर वाला चाहिए। ऐसे कुछ कुछ माँ बाप ढूंढ भी रहे हैं। एक व्रता पर अटेंशन, दूसरा पवित्रता को अंडरलाइन, सेकंड लाइन है मुरली की, प्यूरिटी को क्या करो, अंडरलाइन करो। डेडिकेशन टू वन, कमिटमेंट टू वन, पहला एक व्रता, कमिटमेंट टू वन, सेकंड प्यूरिटी को क्या करो, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करना अर्थात बाबा ने अंडरलाइन इंग्लिश ही रखा है, हमने बीच में लिस्ट निकाल रहे थे ना कि कौन से शब्द है, बाबा ने इंग्लिश ही रखे और हिंदी नहीं किए उनको। शब्द रेखांकित करना। बाबा ऐसे कठिन शब्दों में नहीं जाते, फॉलो को फॉलो ही रखा है, स्कॉलरशिप को स्कॉलरशिप ही रखा है। 100 शब्दों की लिस्ट है ऐसी कि जो बाबा ने इंग्लिश ही रिटेन की है और हिंदी कभी भी उसको ट्रांसलेट नहीं किया है। लवलीन, वो दोनों को कहीं कहीं तो उससे भी आगे गए, ये लवलीन शब्द कहीं लिटरेचर में नहीं है, ये अभी निकला है। लव और लीन को एक कर दिया और लवलीन नया शब्द बनाया। होली हंस शब्द कहीं पर भी नहीं, हाँ परमहंस है, पर होली इंग्लिश और हंस और दोनों को मिला दिया। न्यूलॉजिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, न्यूलॉजिज्म अर्थात नव शब्द, नए शब्दों का निर्माण किया है यहां पर कुछ कुछ। तो दूसरा रूहानियत लाने के लिए क्या चाहिए, पवित्रता को क्या करो, अंडरलाइन करो, रेखांकित करो। अंडरलाइन करना अर्थात लिखा है पर बोल्ड करना, मेक बोल्ड, बोल्ड का ऑप्शन होता है ना एक, बोल्ड, बोल्ड और अंडरलाइन दोनों करो। और एक चीज कहते हैं इंग्लिश में, प्यूरिटी विद कैपिटल पी, यू आर अ ग्रेट फूल विद कैपिटल एफ, तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो और वो जो एफ है वो कैपिटल है, मतलब बहुत बड़े। तो यहां पर प्यूरिटी को अंडरलाइन करो विद कैपिटल पी, प्यूरिटी। कोई झोंका, कोई वासना की आंधी, कोई देह के आकर्षण का तूफान आ जाए और प्यूरिटी को उध्वस्त कर दे और चले जाए, फिर उभरने में बहुत टाइम लगेगा। क्रोध से उभरने आसान है, ईर्ष्या द्वेष लोभ अहंकार इन सब से व्यक्ति बाहर जल्दी आता है, पर काम से जो गिरा है, चकनाचूर हुआ है, रसातल में गिरा है, दलदल में गिरा है, इस काम के दलदल से, इस काम से चकनाचूर हुई आत्मा हुड़गुड़ टूट जाती, ऐसी आत्मा इसमें उभरने में, इसमें रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। फिर भी वो घाव, वो क्रैक हमेशा रहेगी, इसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्यूरिटी। प्यूरिटी सर्वोच्च रखना, हाईएस्ट। इसको कोई टच ना कर सके। तो दूसरा है प्यूरिटी, तीसरा है रूहानियत की गुह्यता में जाओ, रूहानियत की जो गुह्यता है उसमें प्रवेश करो। जैसे अभी प्रैक्टिस है वाणी में आने की, वैसे प्रैक्टिस हो रूहानियत की, फिर दिल नहीं होगी कुछ बोलने की, इच्छा नहीं होगी। मौन के मंदिर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो वहां जो सुख है, निर्वाण का जो आनंद है, वो वाणी के आनंद से कई गुना अधिक है। जैसे बाह्य मुक्ता का रस है, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, जैसे इस समय तुम बाह्य मुक्ता के रस में हो, वैसे ही क्या अंतर्मुक्ता का रस चखा है? जैसे अब आवास का रस लेते हो, क्या आवास से परे का भी रस कभी चखा है? यह सीधा अव्यक्त बाबा के महावाक्य है। दोनों भी बाह्य मुक्ता में बहुत रस है, परंतु अंतर्मुक्ता का रस, आवास का रस और आवास से परे का रस, गुह्यता में जाना। गुह्यता अर्थात, गुह्यता अर्थात गहराई, रहस्य क्या है उसका, सीक्रेट क्या है उसका, बारीकी से समझना क्या राज है, क्या रहस्य है। हर चीज को रहस्यमय दृष्टि से देखना, जैसे डिटेक्टिव होता है ना, कुछ भी दिखा उसको डाउट आएगा, इधर कुछ तो कोई तो आया था, ये किसके फिंगरप्रिंट है। वैसे ही अध्यात्म में हर चीज को ऐसे देखना रहस्यमय दृष्टि से, कि ये क्या कह रहा है, वो ये कौन कह रहा है, ये क्या रहस्य है, मुरली चल रही है, एक एक लाइन का क्या रहस्य है, एक एक वाक्य का क्या रहस्य है। वाक्य वाक्य के रहस्य को ढूंढना, वाक्य वाक्य रहस्य युक्त है, गंध युक्त है, कोई गंध है उसमें, कोई सुगंध है, कोई सौरभ है उसमें, उस सौरभ को, उस फ्रैग्रेंस को, उस एसेंस को ढूंढना, यह अध्यात्म है। और ये काम हर एक को अपना अपना करना है। मुरली जो आ रही है रोज, ऐसे छोड़ नहीं देना उसको, वाक्य वाक्य में कुछ तो राज है, ऐसे राज जो कपाट खोल देंगे बुद्धि के, ऐसे राज जो अंतर मन में द्वंद चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति होने का मार्ग मुरली है। परंतु वैसे नहीं जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं जैसे हम उसको समझ रहे, वैसे ही उसको समझना है जिस जैसा सुनाने वाले ने, सिखाने वाले ने सिखाया। हमारा और उसका लेवल अलग अलग है, जब हमारा और उसका लेवल एक हो जाएगा तब हम वो वैसे समझ पाएंगे जिस जिस भाव से उसने उसको कहा। तो तीसरा क्या है, गुह्यता में जाना, उसके रहस्य को ढूंढना, जानना। चौथा है समर्पण, चौथा समर्पण, मन वचन कर्म से समर्पण। ये जब समर्पण होगा तब रूहानियत आएगी, ये जब समर्पण होगा तब दृष्टि वितरी बदलेगी। यहां पर बाबा ने कहा जिस्म को नहीं देखो, जैसे प्रैक्टिस हुई है जिस्म को देखने की, अभी प्रैक्टिस करो रूह को देखने की, आत्मा को देखने की, बिंदु को देखने की, मणि को देखने की, हीरे को देखने की, वो तेज पुंज को देखने की, ज्योति कण को देखने की, प्रकाश पुंज को देखने की, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखने की, उस इनकॉर्पोरियल सोल को देखने की जो देह नहीं है, जो देह की सत्ता से परे है। जो देह की सत्ता को देखने का अभ्यास करेगा वो धीरे धीरे शरीर की सत्ता के प्रभाव से परे निकल जाएगा। तो समर्पण करना है यहां पर, इसका ज्यादा विस्तार नहीं किया बाबा ने, पर समर्पण शब्द मुरली में आया है कि समर्पण जब होगा तो दृष्टिवृत्ति स्वतः ही बदल जाएगी। जो विदेश में जैसी सेवा चालू हुई थी रूहानियत की, नैनों से, दृष्टि से छाप पड़ी थी फरिश्तेपन की, प्रभाव हुआ था फरिश्तेपन का, वैसी सेवा अब तुमको करनी है। तो चौथा है समर्पण, पांचवा अमानत, क्या समझना है? अमानत। अमानत अर्थात अमानत किसको कहते हैं? दूसरी की चीज को संभाल के रखना, जो चीज एंट्रस्ट की गई है उसकी केयर करना, देखभाल करना। जैसे किसी ने मुझे बाहर जाते समय कहा ये मेरा पेन है तुम रखना, मैं आने के बाद ले लूंगा। वो आया उधर से, उसने कहा मेरा पेन दो, हमने कहा कौन सा पेन, ये तो मेरा है, तुमने दिया ही नहीं तुमने दिया ही नहीं, क्या प्रूफ है तुमने पेन दिया? क्या प्रूफ दोगे श्याम भाई, ये आपका पेन है ही नहीं, ये मेरा ही है। तो ये कर देना अर्थात अमानत में ख्यानत करना। मन जो तुमको मिला है, जो संकल्प तुम्हारे, वो भी सोचो बाप की अमानत है। जो शरीर तुमको मिला है वो भी सोचो बाप की अमानत है। ये जो घर, ये जो संपत्ति, ये जो बच्चे, ये जो पैसा, ये जो धन, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो सब कुछ विस्तार कर रखा है, वो सब कुछ उसका है। सब कुछ हमको मिला है किस लिए? संभालने के लिए मिला है। हम ओनर नहीं है, हम मालिक नहीं है। मालकियत का भाव हटा देना है, ओनरशिप को। इसी से जुड़ा शब्द है ट्रस्टी बन जाना, न्यासी बन जाना। हमारा कुछ भी नहीं है, हमें दिया गया है। किस लिए दिया गया है? संभाल करने के लिए। घर में जो भी वस्तुएं हैं दी गई है संभाल करने के लिए, पर हम मालिक किसी के नहीं है। सब कुछ उसका है। सवै भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपाल की है, गोपाल का दिया हुआ है, हमारा कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा जिन स्वयं को भी अमानत समझो, दूसरों को भी अमानत समझो, जिनका कोर्स कराते हो, जो जिज्ञासु है, जो सेंटर है, वो सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, ये समझो। जब ऐसी ऐसे अमानत समझोगे तब अनासक्त रहोगे, तो फिर माया की रंगत नहीं आएगी, तो फिर थकावट नहीं आएगी, और तो फिर घबराहट नहीं होगी। नहीं तो घबराहट होगी, नहीं तो थकावट होगी। मेरा है क्योंकि मेरी वस्तु खो गई, अब मैं ढूंढूं और परेशान हूं, कहां गई कहां गई कहां गई वो उसका काम है। अंगद ने पैर रख दिया और क्या कहा था अंगद ने, अगर ये पैर तुमने हिला दिया तो सीता तुम्हारी। अंगद से बाद में प्रश्न पूछा, हाउ डेयर यू डू दैट। अगर उसने पैर हिला दिया होता तो सीता तो हाथ से गई। अंगद ने कहा सीता तो राम की, राम की चिंता है, वो मैं क्या करूं मैंने तो पैर रख दिया, अब राम सोचेगा पैर हिलना नहीं चाहिए नहीं तो टेंशन तो राम का है ना, मेरा थोड़ी टेंशन है। अब राम सोचेगा कि पैर हिलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सीता तो हाथ से धो बैठेगा राम। अमानत मालिक बैठा है ऊपर, हम तो अपॉइंट किए गए हैं, परंतु हमें संभाल करनी है, हर चीज की संभाल करनी है। वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है, भोजन वेस्ट नहीं करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बाथरूम में जाके कोई देखता नहीं तो चालू है पानी मधुबन का पानी है, अच्छा स्नान कर लो, शायद इससे ही कुछ हो जाए, बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही, इसी से ठीक हो जाए। आठ आठ बकेट डालो तो हर चीज को समझना, ये मुझे मिली है संभालने के लिए, और उसके बाद में मिली है तो ले ली जाएगी, जो दिया है उसने वो ले भी सकता है, जिसके पास देने का सामर्थ्य है वो लेने का भी सामर्थ्य उसके पास है। इसके लिए यदि कोई एक व्यक्ति है उसमें कोई विशेषता है, ठीक है, और उस विशेषता को उसको अहंकार आ जाए तो वो परमात्मा छीन लेगा वो विशेषता। फिर सोच रहा है मैं सोचता अच्छा हूं, मेरा ये अच्छा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, याऊं हूं त्याऊं हूं, मेरा ये भी अच्छा, मेरा वो भी अच्छा, ये मेरे पास स्किल है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, और उसी का अहंकार आ जाए। जिस खूबी का अहंकार आ जाएगा वो खूबी छीन ली जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर तो गिर जाओगे नीचे। जिसकी अकड़ थी कुछ भी हो सकता है, पर जिस विशेषता, जिस खूबी, जिस हुनर, जिस स्किल का अहंकार आ जाएगा जिस दिन, वो ज्यादा समय नहीं चलेगा, वो छीन लिया जाएगा तुमसे। छठवा, परीक्षाओं में पास, रूहानियत होगी तो क्या होगा, परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पास होते जाएंगे। अगर रूहानियत का बल होगा, रूहानियत अर्थात स्पिरिचुअलिटी की पावर होगी, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पावर ऑफ योगा, पावर ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की पावर होगी तो सारी परीक्षाओं से हंसते खेलते पास हो जाओगे। अगर कोई गलती हो भी गई जीवन में तो अपनी गलती को ठीक करना है, क्योंकि ठीक करने के बाद हम जब बाबा के पास जाएंगे तो बाबा कहेंगे कि ये गलती तुमको, तुमने इसलिए की थी क्योंकि ठीक करने का ये जो संघर्ष था ये तुमको करना था, इसलिए तुमने ये गलती की, क्योंकि ये जो तुमने ठीक करने का संघर्ष किया, अब उसी संघर्ष के आधार पर दूसरों को तुम सिखा सकोगे कि कैसे ये गलती न की जाए जो मैंने कर दी थी। क्योंकि ठीक करने के लिए 10 साल लग गए, ठीक करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी, पर गलती हुई थी, पर तुमने ठीक की तो बाबा कहेंगे अच्छा ही किया तुमने की थी, अब अपने अनुभव से दूसरों को सिखाओ समझाओ। तो परीक्षाएं पास, 6 हो गए, 10 है, 7वां सदा हर्षित, रूहानियत की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या, सदा हर्षित, दूसरों को भी क्या करो, हर्षित करो, मन को हर्षाओ, ये वरदान है, हर्षित रहना क्या है, वरदान है, एक बाबा ने कहा कितनी अच्छी बात है, सदा हर्षित रहना, झूठी वाली हर्षित मुक्ता नहीं, सच्ची वाली, ऊपर ऊपर की नहीं, आंतरिक हर्षित मुख रहना, मतलब इसका अर्थ नहीं हा 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 हा, हंसना हर्षित मुक्ता नहीं है, हर्षित लाफिंग क्लब्स नहीं बनना, हर्षित मुक्ता आंतरिक स्थिति है, मन की वह अवस्था जिसमें दुख की कोई लहर उसमें नहीं, दुख के कोई छींटे उसमें नहीं, दुख के कोई झोंके उसमें नहीं, दुख की हवाएं वहां पर नहीं आ रही है, दुख की आंधी वहां नहीं, वो चित्त की वह मन का लेख जहां पर निस्तरंग है, दुख की लहरें जहां नहीं उठ रही, वो अवस्था अर्थात हर्षित मुख अवस्था। बाहर से हा हा करने से नहीं आएगी, वो अट्ठाहास करने से नहीं आएगी, दिखावा करने से नहीं आएगी कि हम तो बहुत ही खुश रहते, तुम क्यों दुखी हो, इतना पुरुषार्थ करते हो फिर भी दुखी, फर्स्ट आते हो फिर भी दुखी, हम थर्ड आए फिर भी उचित रहे नहीं फिर भी खुश। सदा हर्षित, 8वां सदा स्नेही, क्या करना है, सदा स्नेही, एवर लविंग, एवर लविंग बनने से क्या होगा, विघ्नों से पार जाएंगे, तो ये एवर लविंग बनना अर्थात लव निरंतर हृदय में हो, हेट्रेट ना आ जाए वहां पर, घृणा ना आ जाए किसी आत्मा के प्रति, नफरत का भाव ना जाग जाए, ये आत्माएं बहुत खराब है, ये बहुत दुख देते हैं, इन सूक्ष्म में बद्दुआएं हमारे मन के अंदर से किसी के लिए ना निकले, क्योंकि जो बद्दुआएं निकलेगी, क्योंकि हम महान आत्माएं, वो सत्य हो जाएगी, उसके लिए शाप अभिशाप बन जाएगी वो बद्दुआ उसके लिए, इसके लिए हम वरदान ही, हमें वरदान देने हैं, शाप नहीं देना है किसी को, दुर्वासा नहीं बन जाना ब्राह्मण परिवार में, थोड़ा सा किसी ने कुछ किया क्रोध और जल निकाला और डाला उसके ऊपर, बेचारा पुरुषार्थी है परवश है, और तुम तपस्वी बहुत बड़े हो, शाप लग जाएगा बेचारे को, शिला बन के बैठेगा, लंबा समय कब आएगा राम, कब चरण कमल, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, कब रघुवीर आएंगे और कब स्पर्श करेंगे और तब शिला से जागेगी, वो एक नाटक में शबरी का रोल कर रही थी वो कोई बहन, तो वो क्या बेर,
पर बेर इतने टेस्ट किए कि बेर ही खत्म कर दिए पूरे और राम जी जब आए तो बेर ही नहीं थे राम के लिए क्योंकि टेस्ट करते करते पूरे ही बेर खत्म कर दिए तो राम जी को भूखा ही रहना पड़ा नाटक में एट नाइन्थ वृत्ति से वायुमंडल चार उदाहरण दिए हैं यहां पर कौन कौन से चार उदाहरण है यहां पर जैसे वातावरण में कोई चीज जाती है तो फैलती है वैसे ही क्या फैले रूहानियत तुम्हारे अंदर जो है वो फैले जैसे किसी को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है आशीष भाई घेराव डाला जाता है वैसे शिकार करो आत्माओं का क्या करना है बच्चे बाप से कहते हैं बाबा क्या कहते हैं साकार मुरली बच्चे बाप से कहते हैं बाबा ये कलराटी जमीन है यहां कोई भी नहीं है निकलता नहीं यहां से कोई बाप कहते हैं बच्चे जंगल में शिकारी को शिकार न मिले ये हो सकता है क्या तुम शिकारी हो स्पिरिचुअल हंटर्स लगाओ निशाना घेराव डालो सब एक साथ घेराव डालो इतना अध्यात्म का घेराव कि बेचारा फंस जाए और बंदी बना कर ले क्या हो ये बंधन ही उसे सब बंधनों से मुक्त करेगा तो क्या करो घेराव डालो तीसरा उदाहरण चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए कोई भी मूड वाला कोई भी पद वाला क्या करो पर्सनैलिटी की का मूड गुणों का मूड शक्तियों का मूड सबसे उसको बदल दो चाहे कोई भी आ जाए ये नहीं सोचना अरे बाप रे सभा में ये इतना बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ आईएएस ऑफिसर अब मैं बोलू कैसे वो रहने दो आईएएस या रहने दो प्रेसिडेंट आत्मा परमात्मा को जानता है क्या बाप को जानता नहीं हम जानते हैं खत्म जो बोलना है बोल दो डरना नहीं है हाँ बाद में भले जाकर उसका अवगत सत्कार करो पर जब हम स्टेज पर है हमारे पास अथॉरिटी है ज्ञान की और वो सर्वोच्च अथॉरिटी है तो क्या करो आशीष भाई कैसी भी मूड वाली आत्मा आ जाए पद वाली आत्मा आ जाए गुणों का क्या मूड बोला पर्सनैलिटी रूहानियत की पर्सनैलिटी और शक्तियों की पर्सनैलिटी से सर्व शक्तियों की पर्सनैलिटी से उस पर प्रभाव डालो वो क्या हो जाएगा झुक जाएगा वो पर ये लक्ष्य नहीं रखो कि वो झुके इसमें अहंकार भी आ सकता है ये झुक क्यों नहीं रहा है हम बड़े हैं हम ऑफिसर है ऐसे लक्ष्य नहीं रखना है ये तीसरा उदाहरण चौथा उदाहरण जैसे गुलाब जैसे खुशबू वायुमंडल में फैलती है वैसे रूहानियत की खुशबू वायुमंडल में फैले और ये सब का आधार क्या बताया वृत्ति फाउंडेशन है वायुमंडल का और वृत्ति का फाउंडेशन एक जगह बताया दृष्टि जैसी दृष्टि जहां दृष्टि जाएगी वैसी वृत्ति होगी पहले बताया तो दृष्टि वृत्ति वायुमंडल उसका भी आधार संकल्प भावनाएं वो सब चीजें हैं तो यह है नौवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट नरेश भाई रहम ज्ञान युक्त रहम अब ये क्या है ज्ञान युक्त रहम क्या होता है रहम नहीं करना है रहम तो सब पर करना चाहिए मर्यादा के अंदर रहकर सुख दो ज्ञान युक्त रहम क्या है क्या रहम करे या ना करे सोच समझ के रहम करो गार्डेड रहम और और ऐसा रहम नहीं कर दो कि हम ही फंस जाए उसमें ड्रामा में सबका पार्ट है नहीं रहम ज्ञान युक्त रहम क्या है नब्ज देख के दवाई ठीक है पर रहम क्या है मर्यादा के अंदर रहकर रहम करना है तो उदाहरण दया कृपा उदाहरण सीता का क्या उधर हाँ मर्यादा तोड़कर उसको लगा साधु आया है बाहर उसको भिक्षा तो देनी चाहिए लकीर से पार, रेखा से पार गई और फिर शोक वाटिका पहुंच गई। ज्ञान युक्त रहम और अहंकार नहीं आए। अच्छा, और दूसरों क्या चाहता है वो सोच के रहम करना, ये भी ज्ञान युक्त रहम। जिसको जो चाहिए वो देना, जो जे वांछी लतोते लाहो प्राणी जात, जिसको जो चाहिए वो देना। और ज्ञान युक्त रहम अर्थात श्रीमत अनुसार रहम, ज्ञान युक्त रहम अर्थात त्रिकालदर्शी होकर किया हुआ रहम, और ज्ञान युक्त रहम अर्थात दूरांदेशी बनकर किया हुआ फार साइटेडनेस रहम। दूरांदेशी ज्ञान युक्त रहम अर्थात आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी श्रीमत, ज्ञान युक्त रहम अर्थात आत्मा समझ कर रहम, ज्ञान युक्त रहम अर्थात आत्मिक दृष्टि से किया हुआ रहम, ज्ञान युक्त रहम अर्थात जितना चाहिए एक्स्ट्रा रहम नहीं करना है, एक्सेस रहम नहीं कर देना। और रहम अर्थात वृक्ष बड़ों के डायरेक्शन के अनुसार रहम कर देना, किसी को नहीं तो अपने कमरे में ही रखने देना, फिर पता चला सारा लेके भाग गया। ज्ञान युक्त रहम अर्थात पात्र देखकर, नब्ज देखकर, ज्ञान युक्त रहम अर्थात भावना और भाव देखकर, ज्ञान युक्त रहम अर्थात। पर बाबा ने यह भी कहा है चाहे कितनी भी विरोधी आत्माएं, अभी कुछ दिन पहले वरदान था, बाप फुल रहम दिल है, बाप फुल रहम दिल है, तो तुम्हें भी फुल रहम करना है चाहे कैसी भी आत्मा हो। थॉमस कार्लाय करके एक स्कॉटिश फिलोसोफर हुआ, हिस्टोरियन, उसने किताब लिखी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इतनी मोटी किताब। और हिस्ट्री की किताब लिखना मतलब कितने सारे आंकड़े लगते हैं उसमें, फिगर्स लगते हैं, ये तारीख लगती है, डेट्स लगती है, बहुत मेहनत का काम है। और वो अभी पांडुलिपि, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो रखा था, उसने अपने मित्र को दिया, उसने मित्र ने कहा मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, अभी पब्लिश हुआ नहीं था, और वो मित्र लेके गया और उसने अपने घर में ऐसे ही रख दिया ठंडी के दिन। और वो नौकरानी आई, उसको लगा ऐसे ही कागज बिखरे हैं, उसने उठाए और सारे आग में डाल दिए, आग को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, ठंडी थी ना, वो क्या कहते हैं उसको, बॉन फायर, वो विदेश में होता है ना घर के अंदर, क्या कहते हैं उसको, फायर प्लेस, उसमें डाल दिए, वो सब जल गया। अब उसको इतना घबराहट हो गई आत्मग्लानी कि अब वो क्या कहेगा थॉमस। वो जाता है, क्योंकि इतिहास की किताब थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अभी भी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री उस किताब का नाम है। वो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि ऐसा हो गया अब क्या करूं। तो थॉमस कार्लाय एक शब्द भी उसको नहीं बोलता है, कुछ भी फिर से वापस लिखता है सब कुछ। और इसी व्यक्ति के जीवन में रहम के संबंध में और एक चीज है। थॉमस कार्लाय का एक नौकर होता है, वो आता है कहता है मेरा बेटा बहुत बीमार है, मालिक मुझे थोड़े पैसे दो, वो मर जाएगा। तो वो उसको पैसे देता है और वो नौकर चला जाता है। फिर उसका दूसरा एक दोस्त आता है, कहता है वो उसका बेटा बेटा कोई बीमार नहीं था, कोई ऐसी बीमारी थी नहीं उसको, तुमको ऐसे ही फंसा के गया। तो कहता है क्या उसका बेटा बीमार नहीं था, दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज आई एवर हर्ड इन माई लाइफ, कितनी अच्छी खबर है कि उसका बेटा बीमार ही नहीं था, मैं तो दुखी हो रहा था कि उसका बेटा बीमार है। कैसा रहम है ये, बेहद का रहम। दूसरों ने छल किया हमारे साथ जो भी किया, परंतु रहम सभी के प्रति रहम। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, सरल कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ, बिना कारण, कॉजलेस मर्सी है जिसकी, जो वो कृपा कर रहा है, कंपैशन, अनुकंपा जो उसकी हो रही है, कोई कारण नहीं है कि तुमने मेरे लिए किया इसलिए मैं तुम पर कृपा करता हूं, हिसाब नहीं है कृपा का, रहम का, अल रहमान अल रहीम। तो लास्ट पॉइंट क्या है, ज्ञान युक्त रहम। तो टोटल 10 चीजें धारण करनी है रूहानियत के लिए, कौन कौन सी, सबसे पहला एक पति, एक पिता, एक माता, एक भाई, एक बेटा, एक साजन, एक बहन, एक टीचर एक, सदगुरु सब एक, एक 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 व्रता। दूसरा पवित्रता को क्या करो, रेखांकित करो, बोल्ड लेटर भी करो और अंडरलाइन भी करो, दोनों चीजों करो और कलर भी कर दो थोड़ा ताकि दिखे एकदम, और उसकी साइज भी बढ़ा दो, इंक्रीज साइज, मेक बोल्ड, अंडरलाइन, शैडो भी कर दो, ग्लो भी कर दो, सब कर दो ताकि दिखे, एक बॉक्स भी बना दो, क्विक स्मार्ट, स्मार्ट आर्ट, सब कर दो ताकि वो दिखे। क्या करो, पवित्रता को अंडरलाइन। तीसरा रूहानियत की गुह्यता, राज क्या है समझो, राज को गढ़ना है, रिवील द सीक्रेट, अनलॉकिंग द सीक्रेट, अनलिश द सीक्रेट। सीक्रेट क्या है, ये सीक्रेट है, पहले तो ये समझना, ज्ञान ही सीक्रेट है, पूरी मुरली ही सीक्रेट है, ऐसे समझना, ये जो मुरली चलने वाली है ना, ऐसी सीक्रेट है कि इसमें मेरे जीवन की आज जो समस्या है उसका उत्तर इसमें मिलने वाला है, इस भाव से बैठना तो फिर वो उसमें से कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा, नहीं तो आ रही है और जा रही है। बाप आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, बाप ये सारा इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, तुम्हें वानप्रस्थ जाना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें आवाज से परे जाना है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाओ, मौत सिर पर है, होलसेल मौत का बाजार गर्म होने वाला है, मौत की चक्की, कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था मौत की चक्की आया और गया, बापा है, बापा है। कब आया और कब गए पता ही नहीं तो तीसरा है गुह्यता में जाना, ये पहली तीन पॉइंट। नेक्स्ट समर्पण, समर्पण की क्या गहराई है उसको खोजना। अगला अमानत, अगला परीक्षाओं से पास, फिर अगले दो सदा हर्षित, दूसरों को भी हर्षित खुद भी हर्षित, ये वरदान है। फिर सदा स्नेही, स्नेही अर्थात प्रेम को लाना है, घृणा दूर हो जाए, नफरत दूर हो जाए, निगेटिविटी किसी आत्मा के प्रति है, ग्रज किसी आत्मा के प्रति है, हेट्रेट है, सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेट। हेट्रेट की परिभाषा क्या है, हेटर्ड, हेट्रेड कब, घृणा कब उत्पन्न, किसी आत्मा के प्रति क्रोध लंबा समय तक है, क्रोनिक एंगर, और जो अब सेटल हो गया है, सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेड, घृणा, नफरत, तिरस्कार, वो उससे भी खतरनाक शब्द है, देखना भी नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा, हट जाओ, सामने भी मत आना, दिन खराब हो जाएगा, इतनी घृणा किसी एक आत्मा के प्रति, और उसको पता भी नहीं, कितना बड़ा अभिशाप दे रहे हैं उसको। अगला वृत्ति से वायुमंडल, चार उदाहरण दिए, जैसे वातावरण में कोई वस्तु सब जगह फैलती है, जैसे घेराव डालते हैं वैसे घेराव डालो, जैसे कोई भी मूड वाली आत्मा आ जाए, जैसे गुलाब का फूल रूह है, गुलाब खुशबू फैलती है, रूहानियत की खुशबू फैलाओ। लास्ट पॉइंट, ज्ञान युक्त रहम और रूहानियत का रुहाब, ज्ञान युक्त रहम और रूहानियत का रुहाब, रुहाब अर्थात नशा, रुहाब अर्थात नशा, रुहाब अर्थात, कई मुरलियां चली है इस पर, तो रुहाब और क्या एक दूसरा शब्द जोड़ते हैं ना, रुहाब और रोब, नहीं तो रूहानियत का रुहाब अर्थात रूहानियत क्या, इंटॉक्सिकेशन, वो तो अर्थ है जो मुरलियों में आता है ना, रूह वो और रुहाब, ऐसे दो शब्द आते हैं, रूहानियत और रुहाब, राइमिंग वाला एक शब्द है। तो ज्ञान युक्त रहम करना है तो ये ऐसी 10 चीजें धारण करनी है, तब क्या होगा, रूहानियत जीवन में आएगी। एक लास्ट बात, फिर कोई चेहरा बस गया निगाहों में, खोए हुए क्षितिज फिर उभरे, अस्तमान सूरज फिर उभरे, फिर रेशम बिज गए कटीली राहों में, जब से देखा है वो आंखें उग आई है
कंधों पर पाखे, फिर सपने उड़ चले अदेखी चाहों में, जहां जहां भी छुआ गया वहां वाह हो गया नया, फिर कोई कस गया जादुई बाहों में, फिर कोई चेहरा बस गया निगाहों में। ऐसा उसका चेहरा उसकी बाहों में कस जाना है, समा जाना है, खो जाना है। ओम शांति।